शान गाड़ी में बैठा आरवी का फोन देख रहा था। तब से कम 10 बार उसका फोन बज चुका था और शान बस स्क्रीन को घूरे जा रहा था। अचानक ही कॉल के कटते ही एक मैसेज आया जो उसी नंबर से था, तो शान कुछ सोचकर स्क्रीन को स्क्रॉल डाउन करके मैसेज रीड करने लगा। अब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मेरा फोन नहीं उठा रही, फोन काट रही हो? लगता है तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूं और तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। शान बस इतना ही पढ़ सका, पर धमकी और गुरूर से भरा इतना मैसेज पढ़कर वो इतना तो समझ गया कि आरवी को वो शख्स किसी बात पर धमका रहा है, ये प्यार भरा मैसेज तो नहीं था। शान यही सोच रहा था कि एक और मैसेज आ गया। तुम्हें लगता है उस लड़के से शादी करके तुम मुझसे पीछा छुड़ा लोगे? अगर ऐसा है तो इस गलत फहमी को तुम्हें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि तुम कल भी मेरी थी, आज भी मेरी हो और हमेशा मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा। मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम उस लड़के के लिए मुझे धोखा देकर उसके साथ चली गई? पर भूलो मत, मैं विहान हूँ, विहान बजाज। जिस पर मेरी नज़र आ जाए मैं उसे अपना बनाकर ही रहता हूँ। तुम भी सिर्फ मेरी ही बनोगी, मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा, समझी? कुछ और मैसेज थे, उसके बाद एक आखिरी मैसेज आया। ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर कल रात को 8 बजे तुम ब्लू हेवन होटल के रूम नंबर 110 में मुझसे मिलने नहीं आई तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इस धमकी को हल्के में लेने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि या तो कल तुम खुद अपने उस पति को छोड़कर मेरे पास आओगी, वरना जो मैं करूंगा उसके बाद वो खुद तुम्हें धक्के मारकर अपने घर और अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। उसके बाद तुम्हें मेरे पास आना ही होगा और तब तुम मेरा प्यार नहीं, मेरी नफरत देखोगी। अभी तक तो मैं तुम्हें पत्नी बनाकर इज्जत से अपने पास रखना चाहता था, पर तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखूंगा और तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। मैसेज पढ़कर शान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस 2 मिनट के अंदर उसने फोन अनलॉक कर लिया और कॉल हिस्ट्री चेक की, पर पिछले 1 महीने में जब से उनकी शादी हुई थी उसके बाद से आरवी ने सिर्फ अनुपमा जी और रश्मि से ही बात की थी। ये देखकर शान ने गुस्से में इनबॉक्स खोलकर सारे मैसेज पढ़े। उन धमकी भरे मैसेज को पढ़कर उसकी भौहें खतरनाक अंदाज में सिकुड़ गईं। वो गुस्से में उस नाम को घूरता रहा। गाड़ी विला के पार्किंग में जाकर रुकी। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर उसको बताया, तब जाकर शान ने फोन पर से नजरें हटाई और उसको स्विच ऑफ करके अपनी पॉकेट में डाल लिया। चेहरे पर कोल्ड लुक्स लिए वो कार से बाहर आया और अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर कदम रखते ही उसके कानों में सुभाष जी की आवाज गई, ये हम क्या सुन रहे हैं बेटा? मल्होत्रा खानदान की बहू हैं आप, किस चीज की कमी है यहाँ? आप ऑटो में घर क्यों आई? तकलीफ हुई होगी आपको, एक फोन कर दिया होता तो गाड़ी पहुंच जाती आपके लिए। अगर शान को पता चल जाएगा तो कितना गुस्सा करेंगे वो, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। आपको ऑटो से नहीं आना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, आरवी के कुछ कहने से पहले ही वहां शान की रौबदार आवाज गूंज उठी, तो मंजू के साथ ऑटो से आई थी? उसका सवाल सुनकर सुभाष जी और आरवी दोनों ही चौंक गए। पहले उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर पीछे मुड़कर देखा तो शान गुस्से में आरवी को घूर रहा था। आरवी कुछ कह नहीं सकी। तब तक शान ने एक बार फिर सख्ती से सवाल किया, मैंने पूछा आज तुम मंशु को लेकर ऑटो से घर आई हो? आरवी ने हां में सर हिला दिया। अगले ही पल शान ने एक बार फिर उसको घूरते हुए सवाल किया, तुम ऑटो से क्यों आई? मैंने कहा था ना कि आना हो तो घर पर फोन कर लेना, ड्राइवर आ जाएगा तुम्हें और अंशु को लेने। मेरे पास मेरा फोन नहीं था, किसी का नंबर भी याद नहीं था, आपका था, पर अगर आपको फोन करती तो आप गुस्सा करते, इसलिए मैंने कैब बुक कर ली थी। और आप चिंता मत कीजिए, मैं अंशु को ध्यान से लेकर आई हूँ, उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, आरवी ने आराम से जवाब दे दिया। उसकी बात सुनकर शान ने एक बार फिर गुस्से से कहा, मुझे फोन क्यों नहीं किया? आप गुस्सा करते, फिर घर ही तो आना था, आपकी गाड़ी से आऊं या कैब से, की तो दोनों कार ही, और मैं अंशु को आराम से लाई हूँ, उसको जरा भी तकलीफ नहीं हुई है, आरवी ने एक बार फिर सफाई दी। उतने में अंशु को लेकर अर्पिता जी भी वहां आ गई। आरवी की बात सुनकर अर्पिता जी ने उनके तरफ आते हुए कहा, शान रहने दीजिए, अब इस बात पर तो उनसे झगड़ा मत कीजिए, वैसे भी गलती आपकी है, आप ही उनका फोन लेकर चले गए थे, तो वो और क्या करती, और वो अच्छे से आई थी, आगे से वो ऐसा नहीं करेंगी, हमने उन्हें समझा दिया है। शान कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर अंशु पर चली गई जो उसे ही देख रही थी। उसे देखकर शान ने खुद को शांत किया और उसके पास आकर घुटनों के बल बैठते हुए प्यार से उसके गाल को छूकर बोला, बेटा आप ठीक हैं? अंशु ने प्यारी सी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए कहा, यस डैडी, आज अंशु नानी से मिली। पता है, नानी ने अंशु को टू मैनी चॉकलेट दिए थे। अंशु ने नानी के साथ प्ले भी किया, फिर मम्मा के साथ बेबी वापस होम आ गई। उसकी बात सुनकर शान ने एक नजर पीछे खड़ी आरवी को देखा, फिर प्यार से अंशु के माथे को चूमकर बोला, बेटा आप दादू और बड़ी दादी के साथ प्ले करिए, डैडी फ्रेश होकर आते हैं फिर आपसे बात करेंगे। अंशु ने मुस्कुराकर उसके गाल को चूमकर ओके डैडी कहा और सुभाष जी के पास चली गई। शान ने सीढ़ियों का रुख किया और चढ़ने से पहले एक बार फिर आरवी की तरफ नजरें घुमाई और ऊपर जाने लगा। बेटा आप भी जाइए, जाकर फ्रेश हो जाइए, जब से आई हैं काम ही कर रही हैं। अर्पिता जी ने आरवी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। आरवी ने उन्हें देखा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शान अपनी टाई खोलते हुए आरवी के फोन पर आए मैसेज के बारे में सोच रहा था, तभी उसके पीछे से आरवी की आवाज आई। मुझे पता है आप अंशु के लिए परेशान हैं, पर मेरा विश्वास कीजिए, मैं उसे बहुत ध्यान से लाई थी और आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी। गुड, शान की तरफ से आए जवाब को सुनकर आरवी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो मुंह खोले उसे देखने लगी। तभी शान उसकी तरफ मुड़ गया और उसको देखकर उसने भौं उचकाकर आंखों से ही सवाल किया, जिसे समझते ही आरवी ने अपना मुंह बंद किया और नामे सर हिला दिया। तो शान ने कहना शुरू किया, वो तुम्हारा फोन आपके पास छूट गया था। आरवी उसके आगे कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ी, तो शान उसको घूर कर देखने लगा। आरवी ने अपनी बत्ती सी चमका दी और खामोश हो गई। तो शान ने आगे कहना शुरू किया, तुम्हारा फोन गलती से मेरे पास रह गया और एक्सीडेंटली मुझसे तुम्हारा फोन टूट गया है। उसने इतना कहा ही था कि आरवी की आंख बड़ी बड़ी हो गई। उसने तेज आवाज में कहा, क्या आपने मेरा फोन तोड़ दिया? पता भी है आपको कितना महंगा था वो? इतनी मुश्किल से मैंने पैसे जमा करके उसे खरीदा था और आपने उसे तोड़ दिया, आरवी ने मुंह बिचकाते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर शान ने अजीब नजरों से उसको देखते हुए कहा, इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, 15,000 का ही था तुम्हारा फोन। आप अमीर है ना, इसलिए आपकी ये कहना आसान है कि सिर्फ 15,000 का ही था। मुझसे पूछिए, उस 15,000 को जमा करने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी, तब जाकर मैंने वो फोन खरीदा था और आपने एक झटके में उसे तोड़ दिया। तोड़ा नहीं है, टूट गया है, आरवी ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा। एक ही बात है, मेरा फोन तो गया ना, लाइए, जैसा भी है मुझे मेरा फोन वापस कीजिए, मैं उसे ठीक करवा लूंगी।
शान ने तो उसे झूठ कहा था, फिर उसको फोन कैसे लौटाता जब फोन टूटा ही नहीं था। तो उसने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कल तक तुम्हारे लिए न्यू फोन आ जाएगा, तुम्हारा नंबर डालकर तुम्हारे पास उसे पहुंचवा दूंगा। आरवी हड़बड़ा गई, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे आपके पैसों से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा फोन दे दीजिए, मैं उसे ही ठीक करवा लूंगी, अगर ठीक नहीं हुआ तो उसे बेचकर कोई सस्ता सा फोन ले लूंगी। वैसे भी मुझे बस माँ और रश्मि से बात ही करनी है, और कुछ मैं इस्तेमाल नहीं करती, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर शान ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा फोन मेरे वजह से टूटा है, मैं तुम्हें नया दिला रहा हूँ, इट्स अ कॉम्पेंसेशन, अब इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। वैसे भी अभी डैड ने कहा था तुम मल्होत्रा खानदान की बहू हो, तो तुम कोई सस्ता सा या टूटा हुआ फोन इस्तेमाल करो तो सर्वेंट्स क्या कहेंगे। टू बी कंटिन्यूड।